समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। और डेडलाइन में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या जन्मदिवस। तो आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। And well, we have this very, very amazing news magazine in which we bring you a selection of news reports, the latest news that's making headline. Apart from that, of course, if the name of the show is Parikrama, to zahir si baat hai, desh ki parikrama pe bhi niklenge, and we'll see what different stories are pouring in from our correspondents who are placed in different parts of the country. And well, all of that in the next half an hour roughly. So first, let's start with the headlines.
Ji haan. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों को नेताजी से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।
External Affairs Minister Dr. Jaishankar clarifies that India is open to legitimate return of undocumented Indians living abroad, including in United States.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं।
Railways to run over 150 special trains on Mahakumbh to accommodate large influx of devotees on the occasion of Morni Amavasya.
और भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And since, of course, it's the big day, पराक्रम दिवस के नाम से जो जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारा डेटलाइन भी उसी विषय पर है।
बिल्कुल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस मशहूर नारे को देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आजादी के जोश से भरे स्वतंत्र भारतीयों की फौज बनाकर उन्हें अंग्रेजों के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने अंडमान में स्वतंत्र भारत का झंडा पहली बार लहराकर भारत के एक हिस्से को आजाद घोषित किया था। पहले 23 जनवरी केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का प्रतीक था, लेकिन साल 2021 से इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस को मनाए जाने की शुरुआत नेताजी की 125वीं जयंती से शुरू हुई थी। सुभाष चंद्र बोस वो शख्सियत थे जिन्होंने विदेशों में जाकर भारतीयों की चेतना को जगाने का काम किया, विदेशों में मौजूद भारतीय सैनिकों को संगठित किया। नेताजी ने भारतीयों को देश के लिए जीने का जज्बा सिखाया और देश के लिए मरने का मकसद दिया।
Absolutely, Mukesh, and in fact, if we say, I mean, it's such a, you can say, huge personality of Netaji, ke uske bare mein mehaz chand lamhe mein unko sametna bahut mushkil hai. And nonetheless, January 23 is not just a date on the calendars, but indeed a great day to remember the patriot's contribution to his motherland. The struggles faced by the nationalist throughout his life motivate Indians to work for the benefit of their country even today. And though he was born into a Bengali family in Orissa during the British Raj, he had a very, very strong nationalist ideology since his childhood and an unwavering spirit to fight for India's struggles that were etched in the hearts of millions. The early recipient of an Anglo-centric education, Netaji joined the nationalist movement led by Mahatma Gandhi and the Indian National Congress in 1921 after returning from England.
बिल्कुल सारा, नेताजी ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और जब दुनिया में भारत उस सपेरे और गरीबों का देश कहा जाता था और महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर चर्चा की जाती थी, तब नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन करके महिलाओं को अपने साथ संघर्ष में जोड़ा। उन्होंने इस रेजिमेंट में हर जाति, धर्म और क्षेत्र की महिलाओं को जगाकर अपने साथ शामिल किया और उसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया। जब तथाकथित अन्य नेताओं और अहिंसावादियों ने सुभाष चंद्र बोस जी जैसी शख्सियत की कद्र नहीं की और उनके विचारों से असहमति जताई तो वे अकेले ही अपनी आजाद हिंद फौज के साथ अपने पथ पर आगे चल दिए।
वेल एब्सोल्युटली राइट, और वो अकेले ही चल दिए क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी शख्सियत ही इतनी मैग्नेटिक थी कि लोग अपने आप उनसे जुड़ते चले गए। एंड पराक्रम दिवस इज वेरी बिफिटिंग नेम टू रिमेम्बर दिस डे बिकॉज पराक्रम एज वी नो इट्स अ हिंदी वर्ड विच मीन्स ब्रेवरी एंड नोबडी एल्स वुड बेटर एपिटमाइज ब्रेवरी और कारेज ऑफ वैलर दैन Netaji Subhash Chandra Bose. The first Parakram Divas was celebrated in the year 2021, as you said, Mukesh, and it was the celebrations were held at the iconic Victoria Memorial Hall in Kolkata. A light and sound show followed by performances on Netaji's songs based on the Indian freedom struggle were organized to remember the patriot on his birth anniversary. Also, a hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose was unveiled at India Gate in the year 2022. And we have a report, Mukesh, let's listen to it.
महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। नेताजी का विचार था कि इस नश्वर संसार में हर चीज नष्ट होती है और होती रहेगी, लेकिन विचार, आदर्श और सपने कभी समाप्त नहीं होते। किसी एक विचार के लिए किसी व्यक्ति को कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह विचार हजारों जिंदगियों में खुद को अवतरित कर देता है। नेताजी ने अपने इसी विचार के अनुरूप अंग्रेजों का सामना करने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और आजाद भारत का सपना देखने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में देश के प्रति मर मिटने की अलख जगाई। नेताजी द्वारा दिए गए नारों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित रहे और अंतिम समय तक भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद देखने के अपने सपने को साकार करने के प्रति दृढ़ संकल्पित रहे। आकाशवाणी की ओर से ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
बिल्कुल, और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ इस महान सेनानी को बहुत बहुत शत नमन। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या खास है। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए 150 विशेष मेला रेलगाड़ियां चलाने की व्यापक योजना बनाई है। ये विशेष रेलगाड़ियां प्रयागराज के सभी 9 स्टेशन से चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु सुगमता से यात्रा कर सकें।
मेला प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 20% श्रद्धालुओं के ट्रेन से यात्रा करने की उम्मीद है। विशेष ट्रेन चलाने के अलावा मंडल ने यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडेड टिकटिंग और अतिरिक्त आश्रय की व्यवस्था की है। इन तैयारियों के साथ प्रयागराज रेल मंडल का लक्ष्य मौनी अमावस्या पर लगभग हर 4 मिनट में एक रेलगाड़ी चलाने की योजना है। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने कहा कि प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है। महाकुंभ के दौरान अब तक 9,73,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
And Mukesh, we all know that the national capital is gearing up for the Republic Day celebrations. And today was the full dress rehearsal, by the way. तो उसका एक कह सकते हैं एक झांकी कुछ लोग को देखने को मिली होगी।
बिल्कुल, कुछ नहीं, बहुत लोगों ने देखी।
Yes, absolutely. But a very some trivia related to this year's observance of Republic Day. Well, two nationally acclaimed handicraft artists from Puducherry, A. Sekhar and K. Venkateshan, have earned the honor of being invited as special guests to this year's Republic Day celebrations in New Delhi. Recognized for their exceptional contributions to traditional Indian arts, they join an exclusive group of 10,000 invitees who will witness the grand parade on 26th of January. These guests will not only attend the iconic event, but also visit landmarks such as the National War Memorial, the PM Sangrahale, and other significant sites in the national capital. Very interesting, so let's hear more from our correspondent.
A. Shekhar, a recipient of the National Award from the President of India in 2012, has elevated the art of papier-mâché to international acclaim. This craft involves transforming paper pulp into molded creations using glue or paste. Shekhar has added his own innovative touch by designing larger-than-life sculptures, some towering up to 25 feet. His work has graced exhibitions in countries such as the United States, France, and Germany, demonstrating the global appeal of his artistry. Speaking to All India Radio, Shekhar expressed gratitude for the support extended by the central and UT governments, particularly through initiatives like the PM Vishwakarma scheme, which he credited for aiding artisan development. He also appealed for the establishment of storage facilities to preserve and protect handicraft creations. K. Venkateshan represents the fifth generation of traditional terracotta artists from Vilayanur, Puducherry. Having embraced the family craft after completing class 7, Venkateshan has dedicated his life to preserving and promoting this age-old art form. Affiliated with the Ministry of Textiles, he has conducted master craftsman training programs across various states, inspiring a new generation to engage with terracotta art. Venkateshan emphasized the importance of government recognition in motivating artisans and underscored the need for greater outreach to young people to ensure the continuity of this rich heritage. Both artists shared their excitement at being chosen as special guests for the Republic Day celebrations, calling it a once-in-a-lifetime opportunity to represent their craft and culture on a national stage. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashvani News, Puducherry.
और नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिपब्लिक डे एट होम 2025 में शामिल होने के लिए देश भर के 250 प्रतिष्ठित अतिथियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित लोगों में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की कुसमी गांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद भी शामिल हैं। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए देश भर से 10 लखपति दीदियों का चयन किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुसमी गांव की दिव्या निषाद भी शामिल हैं। दिव्या के लखपति दीदी बनने की कहानी संघर्षपूर्ण और विपरीत स्थितियों से जूझकर सफलता हासिल करने की कहानी है। दिव्या निषाद ने राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन बिहान से जुड़कर कामयाबी की नई दास्तान लिखी है। राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण मिलने पर दिव्या निषाद बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।
बिहान समूह से जुड़ के लखपति दीदी बने हों और मोला राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करेंगे है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद और बिहान समूह के भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली जब बिहान से नहीं जुड़े रहे तो बहुत गरीबी स्थिति रही से। 2021 में पति के देहांत हो गए मोर, क्या करना चाहिए कुछ समझ यात्री से और दो बच्चा री से, तो मोला आगे बढ़े के जरिया बिहान समूह सिखाई से, जिनमें मैं जिला जनपद में ट्रेनिंग ले हूँ बिजनेस करे के बारे में। बिजनेस स्टार्ट करें छोटे से कपड़ा के दुकान, एक दिन में 1100 कमा लेता हूँ। किराना दुकान डाले हूँ अपन गांव में कुसमी में छोटे से, जिनमें 700-800 कमा लेता हूँ एक दिन के, जिनमें मोर पूरा काम करके मोर सालाना इनकम 4 लाख से ऊपर है।
केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
India's history is full of brave heroes who fought for the freedom and independence of our nation. And one such name that stands out in Odisha is Veer Surendra Sai. Surendra Sai was a warrior and a patriot who was born on 23rd of January in 1809 near Sambalpur. People across the state paid tribute to their legendary soul on his 216th birth anniversary, remembering his intense fight against the British rule. Let's hear more from our correspondent.
Surendra Sai belonged to the Chauhan dynasty and was the rightful heir to the throne of Sambalpur. However, the British ignored his claim and put in rulers who would support them. At the young age of 18, Surendra Sai began his fight against this injustice. He brought together local tribal leaders and the landowners, leading a long resistance against British rule in Western Odisha. Using guerrilla warfare, Surendra Sai and his followers fought bravely in the dense forests of Sambalpur, launching attacks that troubled the British. Even though he was captured several times and spent 37 years in prison, Surendra Sai never gave up on his fight for the right rights of his people. His struggle was about his claim to the throne and fighting against the unfair British policies that hurt local farmers and tribal communities. He was critical in resisting the British during the 1857 revolt in Sambalpur and the surrounding areas. Places like the Bir Surendra Sai Airport in Jharsuguda and the stadium in Sambalpur honor his bravery. His birth anniversary was celebrated with great pride, reminding us of his sacrifices. Even in distant places like Dubai, people remember him for his courage. Bir Surendra Sai's life teaches us about bravery and resilience. His story continues to inspire many, urging us to appreciate the contribution of his struggle for freedom, reminding us of his heroism and the unbreakable spirit of resistance he showed. For Parikrama, Supriti Mishra from Akashvani Sambalpur.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
We survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.
These words of Netaji Subhash Chandra Bose reverberated across the globe and inspired the Azad Hind Fauj to march across the seas to fight for the independence of India. These words instill a sense of patriotism in all Indians, even today.
Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack. The day is celebrated as the Parakram Divas.
Subhash Chandra Bose was strongly influenced by Swami Vivekananda's teachings and was known for his patriotic zeal as a student. To fulfill his parents' wishes, he appeared for the Indian Civil Service competitive examination and came out fourth in order of merit. However, he was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre and left his civil services training midway to return to India in 1921.
Under the influence of Mahatma Gandhi, he joined the freedom struggle and started working under the guidance of Deshbandhu Chittaranjan Das. Bose was affectionately hailed as Netaji by the people. When the civil disobedience movement was started in 1930, Netaji was already in detention for his associations with a revolutionary group, the Bengal Volunteers. Nevertheless, he was elected mayor of Calcutta while in prison.
He was released and then rearrested several times before being finally released on medical grounds and allowed to proceed to Europe. During the mid-1930s, Subhash Chandra Bose travelled to Europe, visiting Indian students and European politicians to gather support for the Indian cause. During this period, he also researched and wrote the book, The Indian Struggle. Although it was published in London in 1935, the British government banned the book in India out of fears that it would encourage unrest.
Defying the ban on his entry to India, Netaji returned to India in 1936 and was arrested and jailed again for a year. After the general elections of 1937, Congress came to power in seven states and Subhash Chandra Bose was released. He was elected president of the Haripura Congress session in 1938 and during his term, he set up a national planning committee.
At the Tripuri Congress session in 1939, Subhash Chandra Bose was re-elected, defeating Pattabhi Sitaramaiah. He brought a resolution to give the British 6 months to leave India, failing which, there would be a revolt. After opposition to his stand, he resigned from the post of President of Indian National Congress and formed a progressive group known as Forward Bloc.
Netaji started a mass movement against India's involvement in World War and was put under house arrest in Calcutta. In January 1941, he escaped from India in a dramatic manner, impersonating as a Pathan heading Germany via Afghanistan. He sought cooperation with Germany and Japan against the British Empire. In January 1942, he began his broadcasts of Azad Hind Radio from Berlin, which aroused tremendous enthusiasm in India.
Bhaino aur bhaiyo, humne jo azadi ki ladai chhed rakhi hai, use tab tak jari rakhna hoga.
In July 1943, he reached Singapore and took over the reins of the Indian independence movement in East Asia from Rajbihari Bose and organized the Azad Hind Fauj. Netaji named the regiments of INA after Gandhi, Nehru, Maulana Azad. There was also an all-women regiment named after the Rani of Jhansi, Lakshmibai. Under Netaji's leadership, INA drew prisoners of war and thousands of civil volunteers.
Azad Hind Fauj liberated the Andaman and Nicobar Islands, crossed Burma and entered mainland India on March 18, 1944. The defeat of Japan and Germany in the Second World War forced INA to retreat. However, Netaji chose not to surrender and planned to continue the fight from Manchuria with the support from the Soviet Union. But he is reported to have succumbed in the plane crash over Taiwan on August 18, 1945, while flying to Manchuria to seek Soviet support.
However, his death has remained shrouded in mystery, as it was widely believed that he was still alive after the air crash. Subhash Chandra Bose was described as patriot of patriots by Gandhiji. The legend of Netaji continues to instill parakram in all Indians. We salute the great nationalist.
That brings us to the end of this episode.
और सारा आप कार्यक्रम में खेल जगत की हलचल के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं, तो खेल जगत की हलचल लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं अतर सईद। अतर, बताएं कहां से शुरू कर रहे हैं?
धन्यवाद मुकेश। शुरुआत हम करेंगे अंडर 19 महिला विश्व कप के साथ, जिसमें आज भारत को विजय श्री मिली है। आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत ने आज कुआलालंपुर में ग्रुप ए के तीसरे और अंतिम मैच में श्रीलंका को 60 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 118 रन बनाकर श्रीलंका को 119 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवर में 9 विकेट पर मात्र 58 रन बनाए। भारत के लिए शबनम एमडी, विजय जोशीता और पारोनिका सिसोदिया ने दो दो विकेट लिए। भारत की गोंगाडे त्रिशा ने 49 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बात बैडमिंटन की, भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशियाई मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज जकार्ता में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जापान के केंता निशिमोता ने लक्ष्य सेन को 21-16, 12-21, 23-21 से हराया। पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी थाईलैंड के केद्रेन देचापोल पुआवर नुक्रोह की जोड़ी से 20-22, 21-23 से हार गई। मिक्स डबल्स में तनिषा क्रस्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। पांग रोनहू और सुइन चेंग की मलेशियाई जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को दूसरे दौर में 18-21, 21-15, 21-19 से हराया। और अब हॉकी, महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स का सामना आज शाम 6:15 रांची में दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स का सामना रात 8:15 राउरकेला में हैदराबाद तूफान से होगा। पुरुष वर्ग में जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब ने कल शाम रांची में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 2-1 से हराया और इस जीत के साथ जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब अंक तालिका में तीसरे और दिल्ली एसजी पाइपर्स सबसे निचले स्थान पर पहुंच गया है। मुकेश,
धन्यवाद अतहर।
And now it's time for business news. Well, benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, led by the IT and consumer durable sectors. The 30 share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 115 points to close at 76,520. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 added 50 points to settle at 23,205.
और अब कार्यक्रम में उन महान व्यक्तियों को याद कर लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय समाजसेवी, गांधी जी के विचारों के अनुयायी, लेखक और असम के प्रमुख राष्ट्रीय नेता अमीय कुमार दास को। आज उनकी पुण्यतिथि है। ये लोकनायक के रूप में भी लोकप्रिय रहे थे। अमीय कुमार दास गांधी जी के विचारों के अनुयायी थे और इसलिए वो अपने कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने दो बार जेल की यात्राएं भी की और व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे गिरफ्तार हुए थे। अमीय कुमार दास 1946 में असम असेंबली के सदस्य चुने गए और 1947 से 57 तक भारत के विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे। वे संविधान सभा के भी सदस्य थे। 1949 में उन्होंने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।
Today we are also remembering Barun Sen Gupta, the founder editor of the Bartaman newspaper. He was a Bengali journalist and popular political critic. He is remembered for his bold and simple diction of political analyzing that made him extremely well-liked among the common readers, especially in West Bengal. And we are remembering another, you can say, Bengali beauty today, a fine actress of yesteryears and a singer, Geeta Ghatak or Geeta Ganguly. She mainly acted in Bengali cinema, was also an exponent of Rabindra Sangeet. She had a primary lessons in Tagore's songs from celebrated artists like Saila Arjun Majumdar and Indira Devi, having a brief stint in Indian classical music too in her long music career of 65 years.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत की पुरातत्व अन्वेषण के पिता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंगम को. आज उनकी जयंती है. कनिंगम एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना में अभियंता के पद पर नियुक्त थे. इनके दोनों भाई फ्रांसिस कनिंगम और जोसेफ कनिंगम भी अपने योगदानों के लिए ब्रिटिश भारत में प्रसिद्ध हुए. 1833 में एक सैनिक शिक्षार्थी के रूप में वो ब्रिटेन से भारत आए थे. सैनिक इंजीनियर बनकर युद्धों में भाग लिया और बाद में बर्मा जो कि म्यांमार कहलाता है और पश्चिमोत्तर प्रांत की वे प्रमुख अभियंता रहे. वर्ष 1861 में वो सेवानिवृत्त हुए और वो पुरातत्व के काम में लग गए और अपने अध्ययन के आधार पर मृदा शास्त्र के अधिकारी विद्वान माने जाने लगे.
And of course, we are remembering Ramesh Sippy on his birthday today, a fine director, producer, predominantly who worked in Hindi cinema, known for being the director of the magnum opus Sholay, which is regarded as one of the most influential films ever made in India. And the government of India honored Ramesh Sippy with the Padma Shri in the year 2013. In 2017, he founded the Ramesh Sippy Academy of Cinema and Entertainment in Mumbai. And Ramesh Sippy ki filmon mein jo Saleem Javed ki jodi ने एक कैरेक्टर दिया एंग्री यंग मैन का
जी.
वो तो सबको आज तक याद है एंड एवरीबॉडी इज स्टिल इनामर्ड बाय सिनेमा ऑफ रमेश सिप्पी एंड स्पेशली द स्क्रिप्ट ऑफ सलीम जावेद. व्हाई नॉट लिसन टू अ सॉन्ग.
जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में फूल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू महबूबा
सागर किनारे
रमेश सिप्पी ने जो फिल्में बनाई हैं या जिनमें निर्देशन किया है उनमें आजाद है, सीता और गीता 1972 में हुई, इसके अलावा शान है, शक्ति. और शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति का हम अपने श्रोताओं को गाना सुनाएं.
बिल्कुल. And although all his films are, you can say, were quite popular, but nothing could ever match the success of Sholay. Jo I don't know for how many months or maybe years, jo hai kai cinema halls the chote chote, unme kai saalon tak lagatar chalti rahi.
Aur Sholay ka to ye hai ki aap jab bhi dekhen,
yes.
jab bhi, jitne baar bhi dekhen, hamesha nahi lagti.
Absolutely. And he should be credited for bringing Dilip Kumar and the reigning sensation of that time, Amitabh Bachchan, in the film Shakti, jiska bhi hum log ne gaana suna, a very fine film. And that was Ramesh Sippy. Aur keh sakte hain aise logon ke liye ki waqai mein zindagi ek safar hai suhana.
Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana. Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana. एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
तो श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप पर भी इसे सुन सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।